તારીખ 4/6/1996 ના દિવસે માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા.
સંતુષ્ટપણું આવી ગયું અને સમાધાન વર્તું, એ બંને વચ્ચે તફાવત કેવી રીતે પાડી શકાય? હિન્દીને મુક્ષુતાને સંતુષ્ટપના આદરે ઓર ક્ષુતા મેં સમાધાન હો, દો મેં અંતર ક્યા હૈ? જો સમાધાન હૈ વો અસમાધાન સે રિલેટેડ હૈ, સમાધાન અસમાધાન સે સાપેક્ષ હૈ. તો દો એક બાત નહીં હૈ, સંતુષ્ટપણા ઓર સમાધાન દો એક બાત નહીં હૈ. સંતુષ્ટપણે મેં ક્યા હોતા હૈ કે અપની દશા નિરાવરણ નહીં હુઈ હૈ. મનુષ્ય હૈ તો કોઈ અપૂર્વ દશા યા નિરાવરણ દશા તો પ્રગટ નહીં હુઈ હૈ. ફિર ભી લગતા હૈ કે મેં આગે બઢા હું, ઠીક હૈ. મેરી જો હાલત હૈ, સ્થિતિ હૈ, તો ઠીક એસા હોતા હૈ. જો મેં અંતર હૈ અનુકૂળતા ભી ઉપસર્ગ હૈ. તો બાત ક્યાં ચાલતી ચલતી થી, કિસ લીએ વો ઉપસર્ગ હૈ, કિસકો લગતા હૈ કે ઉપસર્ગ હૈ? અનુકૂળતા હો તો સબકો ઠીક હી લગતા હૈ, તો ઉપસર્ગ કૈસે લગે? લેકિન જિસકો અનુકૂળતા મેં સુખ કા અહેસાસ હોતા હૈ, ધોકા ખાતા હૈ. યહી સુખાઘાસ જીવ કો અભિપ્રાય કે સાથ હોતા હૈ સુખ કા અનુભવ. તો અપને આત્મિક સુખ સે દૂર ચલા જાતા હૈ. इसलिए वो उपसर्ग है. ऐसा सुखाभास लगना तो उपसर्ग है. तो आओ पाता है अनुकूल संयोग के. जैसे शास्त्र में दृष्टांत आता है, सौधर्म इंद्र है, सम्यक दृष्टि है, મનુષ્ય હોકર મોક્ષ મેં જાયગા. તો અપના દૈવી ઇન્દ્રાસન પર ઇન્દ્ર સભા હોતી તબ જાકર કે બેઠતા હૈ. લેકિન ઉસકા જો ઇન્દ્રાસન પર બેઠના તો ઉનકો દુઃખદાયક લગતા હૈ. તો શાસ્ત્ર મેં વચન કથન પદ્ધતિ એસે આઈ હૈ કે ઇન્દ્ર કો ઇન્દ્રાસન દુઃખદાયક લગતા હૈ. ઇન્દ્રાસન દુઃખદાયક નહીં લગતા હૈ, ઇન્દ્રાસન કે પ્રતિ અપના પરિણામ દુઃખદાયક લગતા હૈ. દુઃખ પરિણામ મેં હૈ, ઇન્દ્રાસન મેં નહીં હૈ. જૈસે ઇન્દ્રાસન મેં દુઃખ નહીં હૈ, વૈસે ઇન્દ્રાસન મેં સુખ ભી નહીં હૈ. लेकिन सुख की जो कल्पना है वो जीव को धोखा देती है, इसलिए उसको स्वर्ग बोला जाता है। स्वाध्याय में तो चर्चा चली थी, प्रभाव की वांछा यह आत्मा को और आत्मा को अवरोधक है, यह विस्तार से समझाइए। जैसे कि खाने की पीने की देखने की इच्छा होती है, इच्छा होती है और इच्छा के अनुकूल पदार्थ मिलता है, पर तब भी सुख का अनुभव करता है, वही उसी का नाम अनुकूलता है। लिया था उपाध्याय में, तो जीव को रस आता है। क्यों? कि पहले से वो निश्चय कर दिया है कि ये चीज मिलेगी और मुझे सुख मिलेगा। इसलिए इस प्रकार का जो पूर्वग्रह पूर्वक मैंने अभिप्राय पूर्वक जो सुख रस का अनुभव है, वो अनुभव जीव को नुकसान करता है। वो आत्मरस को उत्पन्न नहीं होने देगा। उज्ज्वल पर्याय के प्रति सुख बुद्धि के कारण से जो रस आया, वो आत्मसुख को उत्पन्न नहीं होने देगा, इसलिए वो आत्मसुख की उत्पत्ति में अवरोधक हो गया। करें इस तरह से सहजात्म स्वरूप का अनुभव करना है तो किस प्रकार से और किस विधि से और सहजता से किस रीति से प्राप्त हो वे विस्तार से समझाइए। अपना सहज स्वरूप का जो अनुभव है वो स्वरूप की महिमा से होता है। स्वरूप के अनुभव में बाधक कौन है? राग का अनुभव, माने विकल्प का अनुभव। विकल्प का अभाव होते ही निर्विकल्प स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव होता है। निर्विकल्प स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव तब होता है कि अपना निर्विकल्प स्वरूप ज्ञान में प्रतिभाषित हो और प्रत्यक्ष तौर से मैं ऐसा ही हूं, ऐसा पुरुषार्थ का बल इसके अवलंबन के युग में काम करें, तभी परिणाम जैसा स्वरूप निर्विकल्प है वैसा ही तदाकार स्थिति को धारण करता है। उसी को कहते हैं स्वरूप का पुरुषार्थ। वो आखिरी स्थिति ऐसी होती है। इसके पहले पहले मुमुक्ष को क्रम से आगे बढ़ना होता है। वो क्रम का विषय तो अपने स्वाध्याय में बहुत चलता है। आखिर में पदार्थ निर्णय होता है, यानी पदार्थ का निश्चय होता है, पहचान होती है जीव। तो जितना महिमानंद स्वरूप है उतना ज्ञान में प्रतिभाषित होने से उसकी महिमा सहज अंदर से उमड़ पड़ती है और उस महिमा के दौरान पुरुषार्थ भी चालू हो जाता है। तो मैं ऐसा ही हूं, ऐसा अपनापन होकर के, अहम भाव होकर के, स्वयं भाव होकर के, स्वरूप का आश्रय का पुरुषार्थ चलता है, अवलंबन आता है, तो निर्विकल स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से अपने को अपने रूप में देखने से परिणामकार हो जाता है, तो विकल्प होना बंद हो जाता है, विकल्प का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। सहज यही विधि से स्वानुभव होता है। उतना यह ख्याल रखना जरूरी है कि हमें अनुभव करना है, ऐसा लक्ष्य हमको रहना नहीं चाहिए। प्रश्न को अनुभव करने के लिए है, विधि यह है, लेकिन सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। कि इस आत्मा को गुण का प्रेम होने है, मुमुक्षु आत्मा को गुण का प्रेम है, पर जो हमारे आत्मा का परिचय हुआ, उस परिचय से जो पहचान हुई, वो पहचान में तो अनंत गुण का की निधि भरी है। जिसको एक गुण का भी प्रेम हो गए, उसको अनंत गुण का निधान अपने में दिख जाए तो कितना प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम के परिणाम ऐसे हैं कि जिससे वो प्रेम करता है उससे दूर वो नहीं रह सकता, पर सबको तो कोई दूसरी चीज तो है नहीं, अपना ही तो स्वरूप है, इसलिए वो अपना स्वरूप में अभेद रूप से अपने तो साधता है। अनुभव सहज होता है, उसमें करना नहीं पड़ता। इस प्रकार स्वरूप की महिमा, अनंत गुण निधान का प्रेम और साथ साथ उसी डिग्री का पुरुषार्थ, मैंने उग्रता, अवलंबन की उग्रता, ये सब मिलकर के स्वानुभव को पैदा कर देता है। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन अलग प्रकार का है। श्रद्धा परिणमती है, परंतु ज्ञान में अब भी स्थिर नहीं आई। स्वानुभव के पहले श्रद्धा सम्यक नहीं होती, मिथ्या होती है, लेकिन मिथ्या श्रद्धा का बल नहीं रहता। जब मुमुक्षु स्वानुभव के समीप के परिणाम तक पहुंचता है, तब भले ही श्रद्धा मिथ्या है, लेकिन मिथ्या का बल नहीं है। श्रद्धा मिथ्या, मिथ्यात्व का शक्ति टूट गई है, उसको अनुभाग टूट गया है, ऐसा शास्त्र भाषा में कहते हैं। इसलिए श्रद्धा का बल ज्ञान बल को मदद करता है, वो सवाल पैदा नहीं होता। यह श्रद्धा का बल है ही नहीं मुमुक्षुता को, मुमुक्षुता में ज्ञान में स्वरूप का भावभाषण होने से जो पुरुषार्थ की जागृति आई उसको ज्ञान बल कहते हैं। वो ज्ञान बल उग्र होकर के ज्ञान स्वरूप का अवलंबन लेता है और विकल्प निरस्त होकर के निर्विकल्प अनुभव होता है। उसी काल में मिथ्या श्रद्धा पलट करके सम्यक श्रद्धा हो जाती है। बाद में श्रद्धा का बल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए काम में आता है। इसके पहले श्रद्धा का बल मोक्ष की भूमिका में लेना नहीं चाहिए, यह होता ही नहीं है। लब्ध हो ज्ञान की पर्याय है, प्रश्न श्रद्धा का है कि श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन अलग अलग है। श्रद्धा परिणमी है, कहाँ परिणमी है? सम्यक दर्शन के पहले श्रद्धा नहीं परिणमी है, सम्यक दर्शन में ही सम्यक श्रद्धा परिणमती है, इसके पहले तो उल्टी परिणमी है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान ही साधन है, श्रद्धा साधन नहीं है। जबकि ज्ञान दशा होने के बाद श्रद्धा के बल से वो आगे बढ़ता है, ज्ञान बल से नहीं बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान तो आगे नहीं भी बढ़े। क्यों? कि ज्ञान का विषय स्व और पर दोनों है, जबकि श्रद्धा का विषय अकेला अपना सहजात्मक स्वरूप रहता है। वो तो पर्याय को स्वीकारती नहीं है, अकेला अपना परमात्मा तत्व को ही वो श्रद्धती है, स्वीकारती है, कबूलती है। तो उसकी अनंत शक्ति जो है, गुण की जो अनंत शक्ति है श्रद्धा के गुण की, तो पूरी पूरी काम करती है। इसलिए इसका बल ज्यादा है। इसका बल कितना? कि सातवें नारकी की वेदना को हटा करके स्वरूप का आनंद देती है वो, उतना बल है। इसके पहले ज्ञान बल होता है। तीसरा प्रश्न, एक समय में स्व का और पर का जानपना होता है, जानपना निरंतर बह रहा है, ज्ञान का वेदन ज्ञान में व्याप्त है, ऐसा वेदन जीव किस रीति से किस पद्धति से पकड़ सकता है वो समझाइए। ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है वो पकड़ने में नहीं आता, यानी मालूम नहीं पड़ता है। इसका यही कारण है कि जीव में जो स्वपर प्रकाशकता के कारण से पर पदार्थ का जानना होता है, उसमें वो आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति के कारण से उनको ज्ञान सामान्य में जो ज्ञान वेदन है वो मालूम नहीं पड़ता, यानी पकड़ नहीं सकता। ये परिस्थिति अभी चालू है। अब हमको ज्ञान में ज्ञान वेदन को पकड़ना है या अनुभव करना है, तो हमें जो नियाश्रित ज्ञान है उसको गौण कर देना चाहिए। इसकी मुख्यता में ज्ञेय की आसक्ति हो जाती है, निर्लुब्धता प्राप्त होती है। वो ज्ञान ज्ञान वेदन को पकड़ने नहीं देते। इसलिए विधि के विषय में ज्ञाकार ज्ञान, जिसको ज्ञान विशेष कहते हैं, उसको गौण करने का उसकी कला, जिसको गौण करने की कला हमको सीखनी चाहिए, तभी ज्ञान सामान्य में ज्ञान वेदन का आविर्भाव होगा और वो अपने को मालूम पड़ेगा कि हमारे में ज्ञान वेदन तो चालू ही है, लेकिन हमारा लक्ष्य और जगह होने से हमको वो मालूम नहीं पड़ता था। तो बात है, वर्तमान में जो राजरूप परिणति चल रही है, कांस्टेंट है, इसलिए पड़ी हुई है, यानी चल रही है, तो यह परिणति ज्ञान रूप किस प्रकार से और किस विधि से हो सकती है वो समझाइए। वर्तमान में हमारी राग रूप परिणति चल रही है, अब हमारी परिणति ज्ञान रूप किस किस विधि से हो जाए, प्रश्न वो है, कैसे हो जाए, तो विधि हमको समझाइए। तो परिणति विषय जवाब नहीं था, प्रश्न नहीं था, प्रश्न था लेकिन परिणति विषय नहीं था, भेद ज्ञान विषय था। तो परिणति कैसे बनती है वो पहले समझे। परिणति का विज्ञान ऐसा है कि भावना पूर्वक बार बार उपयोग हुए तो परिणति बन जाए। भावना, उपयोग और परिणति, ऐसा इसका क्रम है। ये परिणति की विज्ञान है, हाँ? लब्ध तो ज्ञान में ही होता है, जबकि परिणति में तो राग भी है। परिणति में तो राग है, लब्ध तो ज्ञान को ही लागू पड़ता है। ज्ञान की परिणति जो लब्ध रूप है तो ज्ञान में लागू पड़ता है,
ज्ञान में आने के लिए
तो वो तो चलता है, वो तो प्रश्न है, ज्ञान में आने का तो प्रश्न है। तो पहले तो वो समझो कि परिणति राग की बनी कैसे, पहले इसके साइंस को तो समझना चाहिए ना, कि हमारी परिणति राग रूप कैसे चल रही है, क्यों बन गई वो। हमको राग भाता था, बार बार इसका उपयोग होने लगा, तरस आने लगा, तीव्र रस से परिणति बन जाती है। रस तीव्र होने से परिणति बन जाती है, और रस तीव्र होने में देर नहीं लगती, जैसे किसी को अपने स्वजन के मृत्यु का समाचार मिलता है, समाचार एक सेकंड में मिल जाता है कि ये हो गया, तो सेकंड का काम हो गया। उतना तीव्र रस से दुख का उपयोग हो गया, तो रस उतनी मात्रा में तीव्र हो गया कि इसकी परिणति बन जाती है, कई दिनों तक, कई महीना तक वो दुख छूटता नहीं है परिणति से। बारह में तेरह में लड्डू खाने पर भी, मिठाई खाने पर भी, तो दुख की परिणति नहीं छूटती। छूटती है क्या? नहीं छूटती। इस तरह से परिणति बनती है। अब हमें ज्ञान की परिणति बनानी है, तो भावना में बार बार उपयोग हुए, आत्मा हमारे ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है। अगर हमें ज्ञान और सुख की भावना हो गए, उस प्रकार का बार बार उपयोग हो रहे हैं, परिणति बन जाएगी। ये ज्ञानी को स्वानुभव के बाद भी परिणति क्यों ज्ञान की चलती है, कि उसको भावासन के बाद स्वरूप की महिमा बहुत आई, तो भावना में महिमा स्वरूप की बढ़ती रही कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। इतना रस बढ़ता है, इतना रस बढ़ता है कि उपयोग हो जाता है उसका, शुद्ध उपयोग होकर के परिणति बन जाती है, तो फिर अशुद्ध उपयोग में आता है तो परिणति चालू रह जाती है। इस तरह से परिणति बनती है। निर्विकल्पता और सविकल्पता दोनों ज्ञान में चालू है। निर्विकल्पता और सविकल्पता दोनों ज्ञान में चालू है। यह सुबह के प्रवचन में आया था तो किस प्रकार से है विस्तार से समझाइए। ज्ञान की जो निर्विकल्पता है वो ज्ञान वेदन रूप है। वेदन कभी सविकल्प हो ही नहीं सकता, होता है क्या देख लो, जैसे आपने 50 लाख रुपये का हीरे का हार लिया, नेकलेस लिया और पहनने का आनंद भोग रहे हो, इसमें विकल्प है क्या? है विकल्प? खरीदते वक्त आपने उसमें बहुत माथा लगाया, कैसे हीरे हैं, कितने हैं और उसके डिजाइन कैसी है, वो और कई प्रकार के चीकरे परिणाम से उसकी जांच तलाश किया, क्योंकि 50 लाख देने की बात थी, मामूली बात नहीं थी। तो इतनी बड़ी रकम देने के पहले पूरी पूरी परीक्षा तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वहां बहुत विकल्प हुआ, खरीदने के काल में तो विकल्प बहुत हुआ, अब वो पहन करके निकले बाजार में, यस शादी में, हाँ उसको तो विकल्प रहता है कि कितने हीरे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, कैसा डिजाइन है। पहनने के आनंद में जीते हैं तो आनंद निर्विकल्प होता है, क्योंकि वो वेदन स्वरूप है, आनंद है वो वेदन स्वरूप है, और जो परीक्षा करनी थी वो स्वविकल्प ज्ञान स्वरूप था। ऐसे आत्मा को पहचाना तब तो विकल्प किया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे ऐसा गुण स्वरूप है, द्रव्यगुण पर्याय ऐसा है, सामर्थ्य उतना है, वो है वो है वो है, लेकिन अनुभव में आनंद आया वो निर्विकल्प है, क्योंकि वो वेदन का विषय होता है। ऐसे ज्ञान का वेदन भी जो सामान्य रूप ज्ञान है उसमें न कोई ज्ञेय का प्रतिबिंब है और वेदन है तो निर्विकल्प ही होता है, और ज्ञेय का प्रतिबिंब तो ज्ञान सामान्य में होता नहीं। अतः ज्ञान का वेदन निर्विकल्प चल रहा है और ज्ञान विशेष में स्वविकल्पता में ज्ञेयाकार ज्ञान चल रहा है, दोनों एक परिणाम का अंग है, ज्ञान के एक ही परिणाम का दोनों अंग है, दो पर्याय नहीं है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी समझने में। ज्ञान की दो पर्याय नहीं है, वो ज्ञान की एक ही पर्याय का दो अंग है, एक अंतरंग है एक बाह्य अंग है, बहिरंग है। बाह्य अंग को अंतर्मुख करते ही वेदन ग्रहण होता है, उसी को अंतर्मुखता कहते हैं या स्वसन्मुखता कहते हैं। जी
सामान्य ज्ञान में वर्ण एक का प्रतिबिंब नहीं है, एक का प्रतिबिंब
है, वो तो न्यायिक स्वरूप ही है, खुद ही न्यायिक स्वरूप है। जैसा आत्मस्वरूप है आत्मा ज्ञायक स्वरूप, वैसा ही ज्ञान सामान्य का स्वरूप है, इसलिए तो यहां से वो पहचाना जाता है। हाँ, वास्तव में तो वो ज्ञान सामान्य की ज्ञान वेदन रूप ज्ञानानुभूति है, वही आत्मानुभूति है, फिर आत्मानुभूति स्वरूप है, ऐसा ही आत्मानुभूति स्वरूप है। तो 17-18 में लिया समय सार की गाथा में, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सभी को निरंतर अनुभव में आ रहा है। तो ये निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प नाम निर्विकल्पता चालू है ज्ञान के, और सविकल्पता अनेक नियो को झेलने वाला ज्ञान में चालू है। लेकिन दोनों का आविर्भाव एक साथ हो सकता नहीं। जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है उसको ज्ञान वेदन तिरोभूत हो जाता है, छिप जाता है, पकड़ने में नहीं आता, और जो ज्ञान विशेष को गौण करके ज्ञान विशेष पर भजन है, आपको ज्ञान वेदन खोना पड़ेगा। अगर ज्ञान निरूपर का भजन छूट गया, ज्ञान सामान्य आपको ग्रहण हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, बस ये कला है, उसको ज्ञान कला कहने में आती है। ज्ञान कला जिसके घट जागी, वो तो ज्ञानी जग में सहज वैरागी। क्यों? तो उसको ज्ञान विशेष का तिरोपना है, इसलिए तो आखिरी प्रश्न है। सत्पुरुष के प्रति जीव को परम विनय नहीं आता है, तो क्या ये सत्पुरुष का बाहरी आचरण देखता है इसलिए, या दूसरा कोई दोष इस जीव में होता है इसलिए? ठीक प्रश्न है। परम विनय नहीं आता है और विनय की कमी रह जाती है, उसका मुख्य कारण तो वो है कि उनको उसकी अंतर परिणति का परिचय नहीं है, इसलिए ज्ञानी की पहचान नहीं है। जो विनय भक्ति करता है वो ओग संज्ञा से करता है, ओग संज्ञा से करता है, उसमें पहचान से जो परम विनय आता है वो आ नहीं सकता। एक बात तो मुख्य बात तो वो है, इसके सिवा भी एक दो बात और भी है, वो ऐसी है कि जो सकाम बुद्धि से ज्ञानी की भक्ति करता है तो कितनी विशेष मात्रा में करे, बहुत करे, अधिक करे, तो भी वो परम विनय गिनी नहीं जाती, परम भक्ति गिना नहीं जाता, क्योंकि इसके पीछे सकामता रही है, निष्काम भक्ति नहीं है। सकामपना में दो बात है, या तो मान की वांछा, या तो लोभ में किसी न किसी पदार्थ की वांछा। मैं भक्ति करता हूं इसके फल में अनुकूलता मिलेगी, ये लोभ है, और मैं भक्तिवान हूं ऐसा मेरा सम्मान है, वो मान की मानसा है, ऐसा मुझे सम्मान मिले वो मान की मानसा है। दो प्रकार की वांछा होती है,
ज्ञाननी इच्छा हो तो, ज्ञाननी इच्छा हो तो सकम्मक ज्ञान,
ज्ञान की इच्छा हो और भक्ति नहीं हो तो भी वो यथार्थ नहीं है। तो कृपालु देवी लिखा ज्ञान की इच्छा में भक्ति की प्रधानता है कि नहीं है, वो पहले देखना चाहिए। अगर नहीं है तो यथार्थ नहीं है, वो भी वांछा होगी, वो भी सकामता होगी। चलो ठीक,
મોટા ભાગના જ્ઞાનીઓ પાસે જતા હોય છે, જેઓ તો કઈ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જતા હોય છે ઓન એન એવરેજ,
હા, લેકિન ઇનકો જ્ઞાન ચડતા નહીં હૈ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के पास जाता है, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, यही कारण है कि उसको परम विनय नहीं आया।
ज्ञानी करता ज्ञान, ज्ञान करता ज्ञानी करते विनय होते
हैं। और एक भेद है, एक प्रकार और फर्क भी है कि भले ही अंतर परिणति से पहचान नहीं आई हो, परंतु अपना उलझन का, मूंझन का, असमाधान का, टेंशन का दुख मिटने में जो भी समाधान की प्राप्ति होने से विश्वास आया हो तो परम भक्ति हो सकती है, वो परम विनय हो सकता है। क्योंकि उनको विश्वास आ जाता है कभी मेरा निवेड़ा यहां से हो जाएगा तो परम भक्ति में वो जीव आ जाता है, बिना पहचान भी हो। उनको कभी ऐसा भी लग जाता है कि मेरी पहचान होगी, क्यों कहीं से भी ऐसा समाधान प्राप्त नहीं हो करके अपना असमाधान का दुख चालू रहा था, वो दुख छूट गया, और दुख छूटने से आत्मा ऊपर जो असर आई दुख से मुक्त होने के, इस उपकार बुद्धि के वशात परम भक्ति आ सकते हैं, तो उनको पहचान तक ले जाएगी। ये भी एक भेद है, ऐसे पहचान के पहले अनेक प्रकार होते हैं। निष्काम पने से अगर भक्ति होती है तो भी वो निर्मलता को ले आएगी और वो भी पहचान तक पहुंच जाएगी। ऐसे भक्ति के जो प्रकार है वो भी विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न प्रकार का होता है, तो ज्ञानी जानते हैं। दूसरे मुमुक्षु का तो विषय नहीं है तो वो कभी भूल खा जाता है, तो इस जीव को पहचान तो नहीं है तो इतनी भक्ति करता है तो कोई दिखा देखी से करता है या नकल से करता है, क्या बात है, लगेगा शायद, ऐसा नहीं भी होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं इसमें। हाँ, तो आध्यात्मिक पना आ जाएगा। परम भक्ति का यही मर्यादा है, तो आज्ञा में रह जाएगा, आज्ञा का अतिक्रम नहीं करेगा। ये बात
जरूरी है,
हाँ, उसका विकल्प भी आज्ञा बन जाता है। इच्छा क्या विकल्प आया कि ऐसा होना, वो आज्ञा हो गई। जो ज्ञानी की सर्व इच्छा को आज्ञा समझकर आज्ञाधीन पने वर्तता है उसको ज्ञान प्राप्ति सुलभ है। ये बात कृपालु देव ने 200 नंबर के वचनावली में कही है। 200 नंबर की वचनावली में चौथा वचन है, चौथा या पांचवा, सत्पुरुष का बाह्य आचरण देख करके को देखता है उनको तो भक्ति आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं उनको, चारों गति में होते हैं, फिर इसमें क्या बाह्य आचरण देखेगा, नारकी का क्या बाह्य आचरण देखेगा, वहां तो मारामारी चल रही है। सदाधार और सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती होता है तो छह खंड जीत में लड़ाई लड़ता है, बाह्य आचरण में क्या करेगा। इंद्र होता है तो देवी आभूषण पहनता है, उसका वैराग्य कहां से दिखेगा, और होता है वैराग्य। और कोई दरिद्र होता है, मजदूर होता है, मजदूरी कर लेता है सारे दिन, कैसे पहचानेगा, बाह्य आचरण से कोई पहचानेगा। अज्ञानी के सभी प्रकार के उदय, ज्ञानी को अज्ञान दशा में से जो बांधे हुए कर्म का अज्ञान दशा में तो उदय आता है, तो उदय को कौन बदल सकता है, वो तो बांधे हुए कर्म का उदय है, वो तो कानून है कर्म का, करुणानु योग का ये कानून है, उसको कौन बदल सकता है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई बदलने को समर्थ नहीं है, इसलिए उदय से और बाह्य ज्ञानी को समझना हो ही नहीं सकता। यहां तक रख, समय हो गया।